प्यारे विद्यार्थियों, श्री बालाजी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान में स्वर्णिम भारत अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने मौर्य वंश तक अध्ययन कर लिया है। आज हम आगे सुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। जो ध्यानपूर्वक सुने, नोट्स बनाएं और याद करें। सुंग वंश मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। मौर्य साम्राज्य के पतन के साथ ही भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। मगध में मौर्य वंश के स्थान पर सुंग वंश स्थापित हुआ। मगध पर मौर्य वंश के स्थान पर सुंग वंश की स्थापना हो गई, जिसने 185 ईसा पूर्व से लेकर 72 ईसा पूर्व तक शासन किया। सुंग वंश ने मगध पर 185 ईसा पूर्व से लेकर 72 ईसा पूर्व तक शासन किया। सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य शासक राजा वरदर्थ का प्रधान सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य शासक राजा वरदर्थ का प्रधान सेनापति था, इसने वरदर्थ को मारकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वरदर्थ की हत्या करके मगध के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। पुष्यमित्र ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। पुष्यमित्र शुंग ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह ब्राह्मण धर्मावलंबी था। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था, ब्राह्मण धर्मावलंबी था। अतः उसने अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेघ यज्ञ भी किए थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किए थे। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि यज्ञ के मुख्य पुरोहित थे। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि यज्ञ के मुख्य पुरोहित थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने जब अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे, उस समय मुख्य पुरोहित पतंजलि था। पुष्यमित्र के पश्चात शुंग वंश के 8 राजा हुए। पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश के 8 राजा हुए, जिनमें प्रमुख थे अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक, भागवत एवं देवभूति। तो पूछ लिया जाए, सुंग वंश के शासकों के नाम लिखिए। तो शुंग वंश का संस्थापक तो पुष्यमित्र शुंग था ही, साथ में अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक, भागवत एवं देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। त्योत्तर ईसा पूर्व में उसके मंत्री वासुदेव कण्व ने उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की। त्योत्तर ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति का मंत्री वासुदेव कण्व ने उसकी हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। तो शुंग वंश के बारे में मुख्य बिंदुओं की बारे में अध्ययन किया। अब नेक्स्ट आगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, इनका साम्राज्य कहाँ कहाँ फैला हुआ था, सातवाहन वंश का प्रतापी राजा कौन था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सातवाहन वंश लगभग 60 ईसा पूर्व में शिमुक नामक व्यक्ति ने गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में सातवाहन वंश की नींव डाली। लगभग 60 ईसा पूर्व में शिमुक नामक व्यक्ति ने गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में सातवाहन वंश की नींव डाली। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, शिमुक था। स्थापना कब की सातवाहन वंश की, लगभग 60 ईसा पूर्व में। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात है। सातवाहन वंश, ये राजवंश आंध्र सातवाहन और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात हैं। सिमुक के बाद, सिमुक के पश्चात सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति व सत्ता का विस्तार किया। सिमुक के बाद सातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति व सत्ता का विस्तार किया। इसने समस्त दक्षिणी भारत पर दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पेठन थी। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात शकों के आक्रमणों के कारण सातवाहन वंश की शक्ति में हर्ष होने लगा। धीरे धीरे सातवाहन वंश की शक्ति कमजोर होने लगी। सातवाहन वंश के तेईसवें शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सखों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति समृद्धि एवं सदा स्थापित की। सातवाहन वंश का 23वां राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शकों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति समृद्धि एवं सत्ता स्थापित की। सातवाहन शासक यज्ञ श्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई। सातवान शासक यज्ञ श्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई। इस वंश के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। सातवान वंश के शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इस वंश के शासनकाल में वाणिज्य व्यापार कृषि एवं अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। सातवान वंश के शासनकाल में वाणिज्य व्यापार कृषि एवं अन्य उद्योगों को भी प्रोत्साहन मिला तथा चांदी तांबे शीशे तथा कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। सातवान वंश के समय सातवान शासन के समय चांदी तांबे शीशे एवं कांसे की मुद्राओं का भी विशेष रूप से प्रचलन हुआ। सातवान वंश के शासनकाल में ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ हुई। सातवान वंश के शासनकाल में ही ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ हुई। इस प्रथा को अग्रहार कहा जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान की प्रथा को अग्रहार कहते थे। सातवान राजाओं ने पश्चिमी दखन में अनेक चैत्य व विहार बनाए। सातवान राजाओं ने पश्चिमी दखन में अनेक चैत्य व विहार बनवाए जिनमें कार्ले का चैत्य प्रमुख था। जिनमें कार्ले का चैत्य सबसे प्रमुख था। तो सातवान राजाओं ने पश्चिमी दखन में अनेक चैत्य व विहार बनवाए जिनमें कार्ले का चैत्य प्रमुख था। ठीक है, सुंग वंश और सातवान वंश के बारे में मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा की है। अब इनमें जो मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं वो बोल देता हूं जो लिखे। पहला प्रश्न लिखें, सुंग वंश की स्थापना कब व किसने की। सुंग वंश की स्थापना कब व किसने की। आंसर लिखे, सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग ने की। सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र सुंग ने की। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, दूसरा प्रश्न लिखें, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। आंसर लिखे, वृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम राजा वृहदर्थ था। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, सुंग वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई। सुंग वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई। आंसर लिखें, सुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई। सुंग वंश के बाद कण्व वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर लिखें, उत्तर लिखें, सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति था, सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, सातवाहन वंश की स्थापना किन नदी घाटियों में हुई? सातवाहन वंश की स्थापना किन नदी घाटियों में हुई? आंसर लिखें, सातवाहन वंश की स्थापना गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों में हुई। सातवाहन वंश की स्थापना गोदावरी व कृष्णा नदियों की घाटियों में हुई। गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों में। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आंसर लिखें, सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। शिमुक, सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। शिमुक था। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, सातवाहन वंश के दो राजाओं के नाम लिखिए। सातवाहन वंश के दो राजाओं के नाम लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न लिखें, सातवाहन शासन काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा को क्या कहते थे? सातवाहन शासन काल में ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा को क्या कहते थे? अंतिम दोनों प्रश्नों के आंसर स्वयं लिखें और इस क्लास को अच्छी तरीके से सुने। सुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में अच्छी तरीके से याद कर लें। कल हम आगे गुप्त साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आज अपनी क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।